Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Svetashvatara Upanishad ke bhashya mein कितना 11वां मंत्र का भाष्य बाकी है, तो अभ्यास करो। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणिः तस्या विद्याना तृतीयं देहभेदे विश्वेश्वर्यं केवल आप्तकामः ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणि तस्या विद्याना तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः भाष्य कहां तक हो गया था? तथा लेंगे विदुषो जीवन मुक्तिम दर्शयति। लिंग पुराण, लेंगे माने लिंग पुराण का प्रमाण दे रहे हैं कि इसी तरह, तथा माने इसी तरह लिंग पुराण में भी चर्चा है, तो जीवन मुक्ति का लक्षण बता रहे हैं। किसको? ज्ञानी को। तथा लेंगे विदुषो, विदुषो माने ज्ञानी को, ध्यानी को नहीं, यहां ध्यानी और ज्ञानी के बारे में चर्चा चल रहा है। हाँ, तो ज्ञानी जीवन मुक्त को प्राप्त होता है, ध्यानी मरने के बाद क्रम मुक्ति को प्राप्त होकर फिर विदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। विदुषो जीवन मुक्तिम दर्शयति, लिंग पुराण का प्रमाण दे रहे हैं। यह श्लोक लिंग पुराण का है। इह लोके परे चैव कर्तव्यम नास्ति तस्य वही माने प्रसिद्ध, यह निश्चय कि तस्य माने ज्ञानिनः, उस ज्ञानी को न तो इस लोक में कुछ करना अवशेष रह जाता है, न परलोक में कुछ करना अवशेष रह जाता है, कुछ कर्तव्य उसका शेष नहीं रहता है। कर्तव्य शेष नहीं रहता है तो मतलब कर्तव्य का नाम है कृत्य, कृत्य माने कर्तव्य, कृतम माने किया गया, इसलिए हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं कृतकृत्य हो गया, कृत कृत्य हो गया, यानी कर्तव्य कर लिया गया, जो कर्तव्य था वो पूरा हो गया, उसी अर्थ में कृतकृत्य होता है। जीवन मुक्तो यतः तस्मात् ब्रह्मविद् परमार्थतः, क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि से वह ब्रह्मविद् जीवन मुक्त हो गया, इसलिए उसको कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इसी तरह शिवधर्म उत्तर पुराण में उस बात को कह रहे हैं, वांछात्येऽपि कर्तव्यम किंचिदस्य न विद्यते। वांछा माने इच्छा, कामनाएं, वांछा सज्जन संगमे, है ना, अभी तो तुम्हारी इतनी कामना तो है और तो हो न हो भगवान जाने, इतना तो है। तुम्हारी क्या इच्छा है? वो बोले है मोक्ष इच्छा। मोक्ष इच्छा का विषय नहीं है। वांछा सज्जन संगमे तेभ्यो परेभ्यो नरः नमः, तेभ्यो नरेभ्यो नमः। महाराज भर्तृहरि ने इस संसार में महान पुरुष, वंदनीय पुरुष, आदरणीय व्यक्ति किसको कहा जाए? तो भर्तृहरि ने कहा कि जिसके मन में सभी इच्छा समाप्त तो हो गई, केवल एक इच्छा है, वह है सज्जन संगमे, कि उसकी एक ही इच्छा, नित्य मुझे सत्संग की प्राप्ति रहे। वांछा सज्जन संगमे परगुणे प्रीति। किसी भी दूसरे के जीवन में यदि कोई सद्गुण दिखाई पड़े तो उसके जीवन के सद्गुण मेरे जीवन में कैसे आवे, उसके लिए उस गुणवान व्यक्ति से प्रीति करना, प्रेम करना। क्योंकि गुणवान व्यक्ति से प्रेम करोगे, प्रीति करोगे, तो संगति करोगे, तो उसके गुण तुम्हारे जीवन में आएंगे। तो उतनी अभिलाषा से परगुण प्रीति ही। वांछा सज्जन संगमे परगुण प्रीति। गुरु नम्रता, जिसके जीवन में गुरु माता पिता, ज्ञान वय और वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध, तो माता पिता वयोवृद्ध हैं, गुरु ज्ञान वृद्ध है। नम्रता, हाँ, विद्यायाभ्यसनम, नित्य निरंतर ब्रह्म विद्या का अभ्यास करता है जो, उसको विद्याभ्यसनम। स्वयोषिति रति, माता पिता गुरु अग्नि और वेद मंत्र, ये पांच के साक्षित्व में, उपस्थिति में जिसके साथ तुम्हारा संबंध हुआ है, उस संबंध को कलंकित न करना, है ना। स्वयोषिति रति, तुम्हारी शादी कोई गुपचुप छुप कर नहीं हुआ, जैसे आज तक करते हैं, आजकल करते हैं, है ना, भाग के करते हैं, अकेले कर लेते हैं, दो गए और माला पहना दिया, हो गई शादी और किसी को पता ही नहीं है। हमारी परंपरा ऐसी नहीं थी, पांच आदमी को पता चलना चाहिए तुमने शादी की है। किस किस को? अग्नि को पता चलनी चाहिए कि तुमने शादी की है इसके साथ। पहला साक्षी तो कौन है तुम्हारे शादी का? अग्नि है। और दूसरा किसको पता चलना चाहिए? वेद के मंत्र को, वेद को पता चलना चाहिए कि तुमने शादी की है। वेद को पता तभी चलेगा कि तुम्हारी शादी में वेद का मंत्र उच्चारण होगा, और वेद के मंत्र ही उच्चारण नहीं किया तुमको, तुम्हारे शास्त्र को ही पता नहीं है तुमने शादी की कि नहीं की है। अग्नि प्रज्वलन ही हुआ, सप्तपदी हुआ ही नहीं तो क्या है भाई, उसको अग्नि को पता ही नहीं है तुमने शादी की नहीं की ना। तो पहला तो अग्नि को पता चलना चाहिए, दूसरा वेद को भी पता चलना चाहिए, यानी वेद का मंत्र प्रयोग होना चाहिए वैदिक विधि से। तीसरा माता पिता को, दोनों को पता चलना चाहिए कि तुमने शादी की है, और चौथा गुरु को पता चलना चाहिए कि तुमने शादी की है। पांच की उपस्थिति एक ही साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई पहले एक दिन अग्नि को पता चला, दूसरे दिन वेद को पता चला, एक महीने के बाद मां को पता चला, दो महीने के बाद बाप को पता चला, और एक वर्ष के बाद बच्चा होने के बाद गुरु को पता चला। ये हमारे यहां ये खेल नाटक नहीं चलता है, है ना। हमारे यहां ये पांचों को एक ही साथ होना चाहिए। उनके साक्षी में तुम प्रतिज्ञा कर रहे हो कि आज से यह मेरी अर्धांगिनी है, मैं इसका अर्धांग हूं, कि मेरी धर्म पत्नी है और इसके बिना मेरा कोई भी धार्मिक कर्म अधूरा होगा, ये प्रतिज्ञा है। समझ गए कि नहीं? इस प्रतिज्ञा को, इस संबंध को कलंकित होने न देना। किसी को क्या कहते हैं, स्वयोषिति रति, योषिता माने स्त्री, रति माने अपने प्रेम का संबंध वहीं तक सीमित रहे, उससे इधर उधर न जाए। गया तो कलंकित हो गया। वंचा सज्जन संगमे परगुणे प्रीति गुरौ नम्रता विद्यायाभ्यसनम स्वयोषिति रति और लोकापवादात भयम। तुम्हारे हृदय में डर होनी चाहिए, डर होनी चाहिए एक ही चीज की। तुम्हें मृत्यु से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए नहीं? मृत्यु से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोक अपवाद से तुमको डरना चाहिए हमेशा। जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, जिस समाज में मैं बड़ा हूं, जिस समाज में मैं पढ़ा हूं, जिस समाज में मैं रह रहा हूं, मुझे आगे भी उसी समाज में रहना है। ऐसा कोई कर्म मेरे से न हो जिससे कि ये समाज मुझे कुछ कहे। यदि कोई कहता है नकारात्मक, तो क्या हुआ? लोक अपवाद, लोक में बदनाम होना, उससे डरना चाहिए। और आज सबसे कमी यही है, ये मानव के दिव्य गुण है, ये आज इन सबकी कमी है ना? वांछा सज्जन संग में है ही नहीं, परगुण प्रीति बिल्कुल ही नहीं है, गुरु नम्रता माता पिता और गुरु में विनम्रता है ही नहीं, विद्या ब्रह्म विद्या में अभ्यास है ही नहीं, स्वयोषिति रति तो और भी स्वतंत्र हो गए, वो भी और भी खत्म हो गए, लोकापवादात भयम डर है ही नहीं, इस बात का डर नहीं है उनको, इसका तो कोई डर ही नहीं है उनको। भक्ति सूलिनी, भक्ति सूलिनी, परमात्मा भगवान जिसके हाथ में त्रिशूल है, सूली है ना, त्रिशूल है जिसके हाथ में, उसके प्रति भक्ति होनी चाहिए। भक्ति सूलिनी शक्तिरात्म दमने, और तुम्हारी शक्ति किसके लिए होनी चाहिए? कि इंद्रिय और मन को दमन करने में होनी चाहिए। शक्तिरात्म दमने। अब आजकल तो सत्ता की शक्ति रामदेव के दमन में लग रही है, शक्ति अपने इंद्रिय दमन में लगाना था, रामलीला के आंदोलनकारी के दमन में लग रहा है। शक्ति तुम्हारी शक्ति, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, सारे शक्तियों का प्रयोग करके किसका दमन करो? आत्मदमन। आत्मा माने मन और इंद्रियों का दमन करने में तुम्हारे में ताकत है, तो इनका दमन करके देखाओ क्या तुम ध्वंस दिखाते हो। और दूसरों को ध्वंस दिखाते जाते हैं और अपने आप पराधीन होकर बैठे लाचार। तो शक्ति का प्रयोग आत्मदमन इंद्रिय दमन में करनी चाहिए। संसर्ग मुक्ति खले दुष्टों से हमेशा बचनी चाहिए। ये नौ चीज, नौ दिव्य गुण है मानव के, ये नौ मानव के दिव्य गुण हैं। जिस मानव में ये दिव्य गुण विद्यमान है, नौ के नौ दिव्य गुण विद्यमान हैं, वो मानव इस धरती का भगवान है। तेभ्यो नरेभ्यो नमः। वो फिर मानव मानव ही नहीं है जिसके जीवन में ये नौ दिव्य गुण विद्यमान है। कौन कौन सी? वंचा सज्जन संगमे पहला, परगुणे प्रीति दूसरा, गुरौ नम्रता तीसरा, विद्यायाभ्यसनम चौथी, स्वयोषिति रति पांचवें, लोकापवादात भय छठी, भक्ति सूलिनी सातवीं, शक्तिरात्मा दमने आठवें, और संसर्ग मुक्ति खले, दुष्टों से संसर्ग की से मुक्त होना, ये नौ। एते यस्य, एते नव गुण, ये नौ दिव्य गुण जिसके जीवन में होंगे, तेभ्यो नरेभ्यो नमः, बस उस व्यक्ति वंदनीय है, अर्चनीय है, आदरणीय है, वही वास्तव में इस मर्त्यलोक का प्रत्यक्ष, तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तब जाकर होगा, वो प्रत्यक्ष परमात्मा है। आज किधर से किधर पहुंच गए भाई, है? आज कहां से कहां पहुंच गए? वांछा से गए हैं, इच्छा। अतएव ज्ञानी की सभी इच्छाएं खत्म होती है, जिसके सारे इच्छाएं खत्म हो गई। वांछात्ययेपि कर्तव्यम किंचिदस्य न विद्यते, और जिसके सारी इच्छा खत्म हो गई तो उसके कर्तव्य ही खत्म हो गए। लोग कहते नहीं महाराज, हमारी इच्छा तो नहीं है, दूसरों के लिए तो करना पड़ेगा ना। कई बार ऐसी समस्या आ जाती है, अपनी इच्छा नहीं है फिर भी दूसरे की इच्छा के लिए करना पड़ता है। तो ये प्रारब्ध का है, प्रारब्ध के तीन भेद माना गया है ना, तीव्र प्रारब्ध के तीन, प्रारब्ध के तीन भेद हैं, मंद, मध्यम, तीव्र, है ना। प्रारब्ध के तीन भेद हैं, मंद, मध्यम, तीव्र, और तीव्र प्रारब्ध के तीन भेद हैं कौन कौन से, अनिच्छा, स्वेच्छा, अनिच्छा, परेच्छा। तीव्र प्रारब्ध के भी ये तीन भेद हैं, स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। इच्छा न होते हुए भी करना अनिच्छा, अपनी इच्छा नहीं है दूसरे की इच्छा है तो उसके लिए भी करना परेच्छा, है ना, और इच्छा ही नहीं है फिर करना, दोनों की इच्छा नहीं है फिर भी करना, तीनों की इच्छा नहीं है फिर भी करना, किसी की इच्छा नहीं है फिर भी वो होता है। मरने की इच्छा किसकी है, तुम्हारी है कि तुम्हारे पति की है कि तुम्हारे बेटे की, किसकी है, हैं? रोगी हो, रोगग्रस्त हो, किसकी इच्छा है? स्वयं की इच्छा से रोगी हुए हो, स्वेच्छा है वो, ना? जो रोगग्रस्त होना, ये तुम रोगी हुए हो तो स्वेच्छा हुए हो, तुम्हारी इच्छा से हुई हो, मैं रोगी हूं, है? तो क्या तुम्हारे बच्चों की इच्छा से तुम रोगी हुए हो? एक बार हम अपनी इच्छा से रोगी हुए थे, वो बड़ा घाटा पड़ा, घाटा हुआ था, बहुत पहले की बात है, बचपन में आश्रम में रहते थे तो काम करना पड़ता था, ड्यूटी लगी थी, तुम्हें ये काम है, तुमको ये काम है, तुमको ये काम है, कहीं झाड़ू लगाने का काम, कहीं बर्तन मांजने का काम, कहीं फिर गौशाला का काम, कोई न कोई काम तो करना ही पड़ता था। तो इस शरीर का काम था बर्तन मांजने का, है? कितने बर्तन मांजने का, 200 आदमी खाते हैं उनका बनाया हुआ भोजन जिस बर्तन में पकता था वो बर्तन मांजने का, बोलो कितने बड़े डेक्ची रहे होंगे, है? तो रोज ही वही करना रूटीन होता था, एक महीना ये करो, फिर दूसरे महीने झाड़ू लगाओ, तीसरे महीना वो करो। तो एक बार मन में इच्छा हो गई रोज रोज बर्तन मांजने का, आज कोठारी को कह देता हूं हमको बुखार आ गया है, हमको बुखार आ गया, सो गया, सोने की इच्छा हुई, बारिश हुई थी, आराम से रजाई खींच के सो गए। अब हमने ये सोचा था कि भाई बुखार आ गया करके सोने से बर्तन मांजना नहीं पड़ेगा, सो गए। कोठारी ने कहा इसको बुखार आ गया है तो खाना ना दो, लंघनम व्याधि औषधम, उसको ये फॉर्मूला याद था, डॉक्टर साहब ये औषध फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, लंघनम व्याधि औषधि, भोजन लंघन कर देना, उपवास करना, खाना छोड़ देना, ये रोग का औषधि है। कोठारी ने कह दिया फट, रसोइयों को कोई भी खाना लेके नहीं आ रहा है भाई, घाटा हो गया, महंगा पड़ गया कि नहीं? वो बर्तन मांजना तो छूट गया लेकिन भूखे भूखे अब करे क्या? तो बहुत भूख लगी, अब क्या करे? गए, सब लोग सोए हुए थे उस समय, रसोई में घुस गए, कुछ तो मिलेगा, कुछ मिला नहीं तो वहां बासी रोटी थी, रोटी के ऊपर घी लगाया और खा गया। दिन भर तो खाया नहीं था, रात को सब सो गए, तो किचन में गए, बासी रोटी में घी लगा के खा गए, और घी थोड़ा कुछ ज्यादा ही लग गया था, तो दूसरे दिन से डायरिया हो गया। तो सही है, जो पहले दिन तो इच्छा से रोगी हुए थे, अब दूसरे दिन अनिच्छा से रोगी हो गए कि नहीं? तो कोई रोगी होना तो कोई चाहता नहीं हो, कोई भी नहीं चाहता है। मेरी मां रोगी हो, कोई नहीं चाहता है, फिर भी होना पड़ता है। इसको क्या बोलते हो? अनिच्छा प्रारब्ध। अपनी इच्छा नहीं, बच्चों के लिए भोजन पकाना पड़ा तो क्या हुआ? परिच्छा हो गया, है ना? स्वेच्छा हो गया, सभी की इच्छा है तो खा लो। तो तीन प्रकार के प्रारब्ध हैं, तीव्र प्रारब्ध के तीन भेद हैं ये। तो इसीलिए कोई इच्छा न होते हुए भी कुछ भोगना पड़ता है तो प्रारब्ध के बारे में यही दृष्टि रखना चाहिए। इह लोके परे वा चैव कर्तव्यम नास्ति तस्य वै जीवन मुक्तो यतस्तस्माद् ब्रह्मवित् परमार्थतः। शिवधर्मोत्तरे वांछात्येऽपि कर्तव्यम् किञ्चिद् अस्य न विद्यते इयैव स जीवन इयैव स विमुक्तः स्यात् संपूर्ण समदर्शनः। समदर्शी, पूर्ण रूप से जो समदर्शी हो गया है वह यहीं मरे बिना ही वह जीवन मुक्त हो जाता है। उस जीवन मुक्तों को फिर वांछा अत्येपि कर्तव्यम किंचित न विद्यते, सभी वांछा खत्म होने के कारण कोई कर्तव्य नहीं होता। तस्मात उपासको, ये तस्मात माने ये सब प्रमाण है, इससे क्या सिद्ध हुआ? ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तस्मात उपासको देहात उत्क्रम्यार्चिरादिना देवयानेन विश्वेश्वरीं ब्रह्म प्राप्य। तो उपासकों के लिए क्या निष्कर्ष निकला? देहात उत्क्रम्य, शरीर से निकलकर। देहात माने शरीर, कौन से शरीर से? हाँ, ये ख्याल रख लेना, स्थूल शरीर से निकलकर, न कि सूक्ष्म और कारण शरीर से। तो कारण शरीर से निकल गए तो काम बन गया। ज्ञानी कारण शरीर से निकलता है, मूर्ख स्थूल शरीर से निकलता है। समझ गया कि नहीं? ज्ञानी कारण शरीर से निकलता है, हट जाता है, और मूर्ख स्थूल शरीर से निकलता है। तो कारण शरीर से निकलता है, स्थूल शरीर से नहीं निकलता, इसलिए जीवन मुक्त। स्थूल शरीर से निकलता है सूक्ष्म, और कारण से नहीं निकलता है इसलिए मूर्ख। बस यही तो फर्क हो गया।